الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ہم خوشگوار یادیں پروگرام لیے خوشگوار یادوں کا مکی مدنی گلدستہ سجائے حاجی امین کے ساتھ جو ہمارے رکن شورا بھی ہیں اور کراچی جو ریجن ہے اس کی ملدی سے مشاورت کے بھی نگران ہیں اور ماشاءاللہ ان کے کافی سفر بھی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ساتھ بڑی خوشگوار یادوں کا تبادلہ ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ماشاءاللہ اس وقت میرے سامنے رسالہ ابلغ گھوڑے سوار ہے بڑی پیاری حدیث لکھی ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے سبحان اللہ ضرور قربانی کیجئے جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی لازمی کرنی چاہیے خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے خوشگوار انداز سے کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا بھی کرتے ہیں جی حاجی امین بھائی کیسے ہیں آپ طویل
الحمدللہ
ماشاءاللہ
اللہ کل حال
خوشگوار یادیں
الحمدللہ
زندگی میں دونوں صورتیں انسان کی بنتی ہیں کچھ خوشگوار بھی ہوتی ہیں کچھ ناخوشگوار بھی ہوتی ہیں زندگی میں اجالے بھی آتے ہیں زندگی میں اندھیرے بھی آتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ خوشگوار یادیں رکھا ہے تو ظاہر مکہ مدینے کی باتیں بھی ہم یہاں کرتے ہیں قربانی کا بھی ایک اچھا سا خوشگوار سا ہی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں کچھ یوں آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بیسیکلی تعلق شاید حیدرآباد سے رہا ہے
جی
حیدرآباد تو حیدرآباد سے کراچی کیسے آنا ہوا
اصل میں کراچی میں ہمارے تایا جان جو ہے وہ شفٹ ہوئے تھے یہاں پر اور وہ ہوئے تھے
آج کا نسل تو تایا بھی نہیں سمجھتی ہو
انکل بڑے والد صاحب کے
بڑے صاحب کے بڑے بھائی
تو وہ ہمارے یوں سمجھ گھر کے سرپرست تھے تو 1879 میں یہ یہاں آئے تھے اور پھر ایسا ہوا کہ بیسیکلی کراچی تو آنا نہیں ہوتا تھا لیکن اب سال میں ایک آدھ چکر لگ جاتا تھا تو ان کا
یہ کیا عمر ہوگی آپ کی
میری اس ٹائم جب کراچی میں آیا جب میں کراچی پہنچا تو 22-23 ہو گئی تھی
اچھا
تو 85 میں میں یہاں آیا تھا تو 85 میں میں میٹرک کر کے یہاں پہنچا تھا اور یہاں پہنچ کر پھر 85
قربانی کے تعلق سے اگر میں آپ سے سوال کروں اگر کوئی خوشگوار یادگار بات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو حیدرآباد سے کریں گے یا کراچی سے کریں گے
اصل میں دونوں سے ہی کرنے کا ہونا چاہیے کیونکہ حیدرآباد اور کراچی میں بہت فرق ہے
اچھا
ہاں کہ حیدرآباد میں ذرا جس دور میں ہم میں وہاں تھا تو مذہبی حوالے سے اگر کہا جائے تو دعوت اسلامی کا کام بھی سٹارٹ ہوا تھا وہاں پر تو یہ الحمدللہ سارے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو ایک کام دعوت اسلامی کے ماحول کے بعد جو رجحان بڑھا ہے ہر چیز میں تو اس کو میں قربانی پر بھی پیسٹ کروں گا
اچھا
کہ قربانی جو اس دور میں یاد آتی تھی کہ جیسے حیدرآباد میں جو تھے تو وہی بات ہے کہ جس طرح ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ گھر میں ایک جانور ہو جائے क्योंकि बड़ा जानवर ही करने की तरफ मेमनों में ज्यादा रुझान होता था, तो वो एक रुझान। फिर एक जनरल जो फर्क देखा ना, वो ये कि कमजोर और भारी का, कि वो जो एक शहर है हमारा, तो उसमें वो बड़े जानवर, अच्छे जानवर, खूबसूरत जानवर, इसका रुझान कम। बल्कि वो बल्कि मैं आपसे चाहूंगा भी कि इस मौजू पर भी अगर कुछ तरबियत हो जाए, कि बादों का तो जानवर तो ले लिया, अब जानवर लेने के बाद अरे वो सौदा हो गया और वो दुकान जो मालिक था वो भी आगे पीछे हो गया, तो अब उस जानवर को चलाना जो है ना, ये भी एक बड़ा मसला है। यानी मैं याद यही कर रहा था कि आप जब कुर्बानी का पूछेंगे तो मैं क्या, तो मुझे वो याद, वो लम्हे भी याद हैं कि बाद औकात वो गाय को जो है ना, या जो बड़ा जानवर आता है उसको गधा गाड़ी में डाल के लाए। यानी
अस्तगफिरुल्लाह।
इस कैफियत में भी मतलब वो
सही
जानवर
चला, वो इतना कमजोर जानवर।
इतना कमजोर जानवर, यानी वो जो मोहल्ले में जो आते जाते हैं ना, तो ये एक
तो देखिए,
है।
मंडी में जाकर लेने में और एक इलाके में, महल्ले में आकर कोई बेच कर चला जाए, उसमें
नहीं
शायद
ये नहीं,
फर्क।
मंडी में ही लिए जाते हैं, लेकिन जो आपने आपका कोई सिलसिला या दिलों की रात में एक बात देखी थी, जो वेटरनरी डॉक्टर का आपने सिलसिला किया है, मुझे बहुत पसंद आई उनकी बात कि आप जानवर तो बड़ा खरीद रहे हैं लेकिन गाड़ी बड़ी नहीं ले रहे हैं।
आपने
तो ये जो चीज है ना कि भाई जब आपने,
तो
नहीं
खुली गाड़ी ले ली ना, गधा गाड़ी ले ली ना, उसका तो कोई
अब उसमें तजुर्बा नहीं ना, कि आपने जानवर लिया तो उसको भाई चलाकर तो देख के
गधे की
देखो
जगह
अच्छा
बांधना
तो
है या गाड़ी के ऊपर रखना
क्या
है।
करना है। तो ये एक मतलब वही बात यादें। और फिर जो एक और बात जो मुझे हैदराबाद की अक्सर याद आती है, वो ये कि वहां जो ना वो जैसे देहात के जो जानवर आते हैं, तो वो बड़े बकरी टाइप के होते हैं ना, मार धाड़ जो है ना, वो हम बचपन में उसकी बड़ी देखी है ना,
गरीब नहीं होते, गरीब
गरीब, हाँ वो एक अलग जो ना
नहीं
गरीब
होते।
नहीं है। तो ये जो मार धाड़ वाले जो मामला आते हैं, ये भी बहुत अच्छा। फिर वो जो मंडियों का जो एक कल्चर था उस बचपन के दौर का जो थोड़ा बहुत याद है, तो उसमें भी वो
अब तो आज अमीन
अब
हैदराबाद की मंडी भी
हाँ वो
काफी सुना
बिल्कुल
है
बिल्कुल
कि बहुत इसमें मजबूत और अच्छे और जानदार, शानदार जानवर, यानी
बिल्कुल
कराची के बाद शायद हैदराबाद की मंडी को भी एक इम्पोर्टेंस था। कराची मगर एक अहम लेना, खूबसूरत जानवर चाहिए, अल्लाह ताला ने अगर आपको वसअत दी है तो खूबसूरत जानवर ले, अच्छा मिल जाता है। ऐसा होता क्या है कि जानवर ढूंढना है ना, ये काम है
जय श्री
ना, जानवर ढूंढना है काम है। यानी कि मैं तो इतना गया हूँ जानवर खरीदने के लिए कि मैं तो अपने घर का जानवर खरीदने भी खुद ही जाता था। लेकिन वो खैर मेरी बारी जब आएगी तब आएगी, तो मैं अपनी बातें बयान करूंगा। तो जानवर खरीदने काम है, और इतना लुत्फ आता है उसको देखना, कहे थक कर चूर हो जाते हैं। मगर चूंकि एक रेंज होती है, आपकी भी एक रेंज होगी, कि उस रेंज में अच्छा जानवर खरीदना है, तो असल में पसंद और बजट, इन दोनों को अगर आपने मिलाकर काम करना है तो उसमें आपको अपनी मेहनत का तड़का डालना पड़ेगा,
अल्लाह
यानी वक्त देना पड़ेगा। यानी अगर चार चार छह छह घंटे या इससे ज्यादा, अच्छा बातों का ऐसा भी हुआ है कि बगैर खरीदे वापस आए, कि यार अपनी मिल तो रहा था जानवर, लेकिन वो जिसको कहते, क्योंकि थोड़ा आंखों को भला लगे। अच्छा कभी कभी ऐसा हुआ जमीन, शायद आपको इस बात का अंदाजा हो, कि हमने जानवर खरीदा, पहला जानवर अब लग गया ना आंख पर, अब जब भी कहीं गए ना यार वो जो है ना, फिर दोबारा गए यार वो जो है ना, अब वो जब घूम फिर उसके बाद यार कुछ कर, बैठ यार बैठ। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप यूं
ये
चारपाई पर, मंजी पर लेकर बैठ गए हो?
असल में अब तो खैर इतनी एज हो गई कि
कितनी एज हो गई चलता
हो गई तकरीबन,
है?
लेकिन मसला एक बहुत अरसा हुआ मंडी जाने का, मंडी जाने का जो आपने कहा ना थक के चूर, तो ये भी कराची में कुछ हुआ था चक्कर इस तरह का कि शौक हुआ था कि भाई हम भी खरीदेंगे जाएंगे। तो बात वही बात आपकी कि भाई चॉइस की, अब चॉइस किए तो लग गया कि भाई इसको लेना है, अब वही आए नहीं, तो फिर वो जो ग्रुप में जो बड़े समझदार इस टाइप के यार बैठ भाई बिठाया
ऐसा हुआ, आपका तजर्बा होगा, होता ही क्या है बात होगा, जैसे हमारे साथ तजर्बे का लोग भी खरीदारी के मौके पर आए कि उसको बेचने वाले का हाथ पकड़ते तो कोने में ले जाते, तो यार मेरी बात सुनिए, कान में बात करते, इतना वो एक माहौल होता है। मुझे रियली, अरे आप अपने पालने का जानवर लें या किसी मतलब दूध के लिए जानवर ले लें, आपको वो वो चीज नहीं मिलेगी। आप देखिए कि यही जानवर, आप देखिए कि ये कुर्बानी का नहीं है, उसमें वो कशिश नहीं होती।
क्या क्या
ये जो कुर्बानी के जानवर है ना, ऐसा लगता है कि इन्हें वाकई कुर्बानी के लिए पाला गया
क्या
यार।
बात
और
क्या
जब
बात
हम अच्छा फिर इस पे वाकई रगबत हो जाती है, एक उससे एक तो इन्वेस्टमेंट भी है, पैसा भी लगा है, पर से एक जज्बा है कि यार ये मैं इसको अल्लाह की राह में काट रहा हूं।
आपकी बात से की बात याद है, मैं मस्जिद कॉलोनी में था लांडी की तरफ, तो वहाँ हमारे इस टाइम पे जो इज्तिमाई कुर्बानी और
मैम आपने आपकी
फैसिलिटी,
ज्यारत की थी
तो
वो?
फैसिलिटी वगैरह जो होती है ना, तो उसमें मतलब जानवर बंधे हुए हैं। अब हमने पूछा भाई इनको खिलाने पिलाने का, तो कभी देखे हमने ये फैसिलिटी तो दे दी है, अब खाने पीने का जो है ना वो जो मालिक है ना वो खुद करेगा। तो वहां जिम्मेदारों ने इस पर जेन बनाया, क्या देखो यार बाज जानवर ऐसे हैं, बोलते ना कि सामने वाला खा रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ, इसका मालिक गया हुआ है फैक्ट्री और उसके घर में बच्चे नहीं है। तो मैं कहा कुछ ऐसा निजाम बनाए कि जानवर भूखा ना हो, कि ये वो मुबारक जानवर है जो कुर्बानी में कटेगा। तो यकीन माने वो ऐसा माहौल, जैसे अभी आपकी गुफ्तगू में वो ऐसा माहौल बन गया कि जैसे ना वो अभी सारे
उठे
इसको
का जानवर खिला
पालते
देते
रहेंगे
थे। ये
माशाल्लाह।
वाकई खुश नसीब है। जो देखिए ये वो जानवर है कि जिनकी इसको हम कहते हैं अफजाइश नस्ल, यानी कि इनकी नस्ल के आने के, इनके बच्चों के पैदा होने का जो पीरियड है ना, ये एक लंबा पीरियड होता है। यानी ये एक नहीं है कि एक वक्त में ये कोई इतने सारे बच्चे बकरी या गाय जन्म देती हो, तो एक टाइम होता है इनका। और दुनिया में करोड़ हा करोड़ों ये जानवर कटते हैं, कभी किल्लत हुई है आपको? अच्छा पूरा साल हम ये खाते
क्या
हैं,
बात क्या बात
हैं?
बिल्कुल
पूरा साल हम ये खाते हैं जानवर, ये जो हम जो काट रहे होते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस जानवर की इन नस्लों में, मुर्गी हम खाते हैं, अभी आपको इन नस्लों में कमी नहीं मिली होगी। इसकी एक वजह हमारे उलमा ने लिखी है,
क्या
हाजी
बात
अमीन, ये वो जानवर है जो राह खुदा में कुर्बान किए जाते हैं। ये वो जानवर है जो राय खुदा में कुर्बान किए जाते हैं। इसकी एक वजह ऐसे ही उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, मदनी फूल है, कि इसकी बरकत की एक वजह यह है कि ये अल्लाह की राह में, चूंकि अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं, अल्लाह ताला ने इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाई।
ना।
ये कम नहीं होते, ये घटते नहीं है। और दुनिया भर में ये बकरा बकरी गाय बैल भैंस और ये ऊंट ऊंट नहर किए जाते हैं, मुर्गी। अच्छा आप बोले या कुर्बानी के दिनों में मुर्गी का करती, मुर्गी जितनी सदका होती है तो मेरा ख्याल है बकरा भी सदका नहीं होता होगा। सदके में मुर्गी दे दो, सदके में मुर्गी दे दो, ये भी अल्लाह की राह में इसको भी काटा जाता है। तो इससे एक तो मदनी फूल मिलता है कि जो जो शेर राह खुदा में दी जाती है ना, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे
हाँ
देता है। आप पैसा वक्त जान जो चीज आप अपने रब की राह में उसकी रिजा के लिए खर्च करें, अल्लाह करीम आपको उसमें अपनी रहमत से बरकत अता फरमाएगा। तो कुछ कुर्बानी के ताल्लुक से बात चल रही थी हाजी अमीन, तो और क्या कुछ खुशगवार यादें हमारे साथ शेयर
माशाल्लाह,
कर?
ये एक ज़ाहिर हमारा वहां का भी एक माहौल और यहाँ का भी माहौल, कंबाइन फैमिली का जो मैं आपको कहूंगा कि माशाल्लाह जिस तरह एक हमारे यहाँ कल्चर है कि खानदानों में मिलकर भी कुर्बानी की जाती है,
जी,
तो शुरू से बचपन से ही माहौल देखा था घर में कि कंबाइन फैमिली यानी
भाई चाचा
बड़ा जानवर वगैरह जो घर के जिनके ऊपर कुर्बानी होती थी, तो कुर्बानी तो हुई। अब मतलब गोश्त की तकसीम और एक अपनाइयत
उसमें
और
हिस्से तो होंगे,
जी
वो
जी
जिसका जो हिस्सा, हमारे क्या होता है कि बाद अवकात एक ही खानदान एक ही बकरा काट लेगा। अब घर में 14-15 अफराद हैं, सब पर कुर्बानी अगर वाजिब है तो एक बड़ा जानवर काट लिए, यानी हर एक का हिस्सा जिस पर कुर्बानी है उसका हिस्सा होना लाजमी है कि वो अपना हिस्सा उसमें वो तरकीब बनाए
इसमें
उसकी।
बचपन से एक बात देखती थी कि अगर बड़ा जानवर है ना तो छुरी लेकर जिसका हाथ है उसका हाथ लगाते थे। तो
आ
मुझे याद है कि वो एक हाथ लगे भाई इसका हिस्सा, तो वो सात अफराद जो है ना वो अपना हाथ
हाथ
लगाते थे कि
लगाते,
भाई ये
क्या आपने
जानवर है
देखी चीज
ये,
है?
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए। तो इसमें भी
मगर
एक
उसमें अगर वो हाथ
नहीं
लगाकर,
हाथ लगा वो छुरी नहीं फेरता
अच्छा
था,
वो
मतलब जैसे घर में एक खवातीन
अलामती तौर
हाँ,
पर
तो
ये भी
अलाम
मेरा
कि
ये भी
भाई
मेरा ये
इसमें
भी मेरा,
सात हिस्से हैं ना, तो इन्होंने अपने अपना हाथ लगाया कि भाई ये जानवर में इनका हिस्सा है
ये
ये
हाथ हाथ छुरी पे लगा देते
छुरी
जानवर
नहीं,
पर।
वो छुरी ले जाकर के भाई इनकी तरफ से कुर्बान है दादी अम्मा का तो दीगर का, तो यूं हाथ लग कर आता था कि भाई ये भी याद आता था कि भाई इस तरह का भी एक बचपन में
बहुत
देखा है।
खूबसूरत बहुत ही प्यारा इवेंट है मुसलमानों का, यकीन माने ईद कुर्बान बहुत खूबसूरत इवेंट है कि एक मुसलमान अपने रब की रिजा के लिए उस दिन जो ईद का दिन है, जो अफजल तरीन इबादतों में से है, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है।
अच्छा फिर वो जो बात है ना, कोई ईद के बाद खाना है, तो अब जो अपना जानवर कटे उसका गोश्त बने,
हाँ उसका
और
गोश्त
फिर जो आएगा ना, तो वो जो एक तैयारी और वो जो एक माहौल बनता था ना,
वो माहौल तो जो हमारे यहाँ बनता है ना, ये तो 2 साल से नहीं बन रहा जी, माशाल्लाह जी। कॉल दीजिए।
तारी है माशाल्लाह, खुशगवार यादें प्रोग्राम अपनी प्यारी प्यारी बरकतें लुटा रहा है। आज हमारे मेहमान हाजी अमीन साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाजी अमीन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जानशीन अहले सुन्नत को तो सबसे ज्यादा जानवर में बकरा पसंद है, आपको क्या पसंद है, इस बारे में इशारत फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
हमारा ये जो प्रोग्राम ना खुशगवार यादें, उसको तो मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि ये यादों के साथ साथ पर्सनल भी हो गया है। हमारे
माशाल्लाह
नाजरीन जो है ना, आप पर्सनल हो रहे हैं, और ना जवाब तो देना पड़ता है।
नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है, और हौसला अफजाई का भी शुक्रिया है इनका। और ये एक फितरी बात है कि बकरी के हवाले से जो एक फजीलत है जो बयान होते ना, कि वो जिस तरह बकरी से मट्टी झाड़ो कि जन्नती जानवर है, तो इस तरह का जो एक फजीलत है बयान होती है, और फिर राह खुदा अज्ज वजल के जब वो वाकयात बयान करते हैं और बकरियों का तस्करा, सुभान अल्लाह, तो बकरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी हो। वैसे भी जब बचपना भी या बड़े भी हुए और जो जानवर करीब आया ना, जैसे छोटे हुए तो बकरी के बच्चे घरों में, तो वो जो एक माहौल देखा है, और अब भी अगर कहीं बकरी का बच्चा नजर आ जाए ना, तो वो जो अभी जैसे हसन रजा, तो हमारे यहाँ नीचे जो एक बकरी थी उसने 2 बच्चे दिए, तो वो जो 2 बच्चे पैदा हुए और उसको जो देखा, उसको उछलता कूदता, तो वो एक फितरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह बकरी
अबला घोरे सुवार रिसाला मेरे सामने, और इसके पेज नंबर 15 पर है, बकरी की इज्जत करो इससे मिट्टी झाड़ो,
क्या
क्योंकि वो जन्नती जानवर है।
बात है,
माशाल्लाह सल्लु अल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गोश्त तकसीम करने के ताल्लुक से कुछ आप
जी। तो
हमसे यादें शेयर कर रहे थे।
गोश्त तकसीम के हवाले से भी फैमिलीज में, खासकर ये जो अगरचे 3 हिस्से का है, लेकिन ये देखा है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फैमिलीज में, कि दूर दूर के भी रिश्तेदार, यानी यूं समझे कि पूरा दिन जो है ना बाकायदा ये बांटने में,
गोश्त आ रहा है, गोश्त आ
बांटने
रहा है, गोश्त आ रहा है।
में लगता था कि वाकई ये जाना है। और जब कराची आए तो जारी यहाँ सफर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि फैमिलीज का एक रुझान
सेम पैटर्न जो हैदराबाद में था आपका कराची में जारी रहा, अक्सर
काफी हद तक,
काफी हद तक जारी रहा। कोई
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब
गोश्त बांटते वक्त का कोई ऐसा वाकया, दूर दूर तक जाना होता होगा?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तो चूंकि जब आए तो सफर तो हमारे तवील यहाँ पर है ही, तो उमूमन उस वक्त घर के अफराद बड़े ज्यादा थे। जैसे मैं अपने अंकल की फैमिली के साथ होता था, तो उसमें रूट बनते थे हमारे, कि भाई आप खारादार और नयाबाद का रूट लें, तो आप करीमाबाद और ये हुसैनाबाद और इस तरफ का रूट लें, तो यूं मतलब हमारी तकसीम का।
यार अरे ये ऐसा आज अम्मी ने जो तस्करा चेहरा, ये इतना खूबसूरत है मैं नाजरीन, कि ये रिश्तेदारों में इतनी मोहब्बतें मैंने देखी हैं। ये मुझे नहीं पता हर कम्युनिटी में है कि नहीं है, लेकिन जैसे आज अम्मी ने अपने बारे में बताया, मुझे भी मेरे मतलब के वो खानदान, और मतलब जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो पीछे पता चला कि वो कोई और मेरे घर दे गया, तो फिर मैं उसके घर देने जा रहा हूँ, तो ऐसा एक दूसरे के खानदान रिश्तेदार, खाला फूफी मामू ये सब। अच्छा वो जो घर में जो गोश्त निकालने का जो एक
पूरा कमरे
माहौल
भरे
होता है
हुए,
कि यार नहीं 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 ये बड़े इनको वो नली है ना, नली है यार, कलेजी यार उसपे डाल दो यार, इतनी
माशाल्लाह
वो खानदानों की मोहब्बतों का अंदाज
क्या बात।
के अपने लिए रखने के ताल्लुक से, फिर वाकई आपने गरीबों में जो तकसीम करने का रहा
जी
है।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक हिस्सा देखा है, और खासकर इन दिनों में तो जो हम जिनके करीब रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनको तकसीम हो। फिर दूसरी बात ये कि जो घरों में कामकाज करने वालियां जो आती हैं, फिर हमारा कुछ अरसा परचून का भी रहा, हम किरयाने की दुकानें वगैरह भी होती थी, तो वो जो मजदूर तबका था ना, हालांकि जब हमने होश संभाला था तो वो कारोबार हमने छोड़ दिया था, लेकिन एक अरसे तक वो जो हमारे यहाँ गाड़ियां चलाते थे या दीगर, तो उनसे भी ताल्लुक
आपका
रहता था।
फैमिली बैकग्राउंड शायद कारोबार से
जी,
रिलेटेड है,
कारोबारी
यहाँ आकर भी कारोबार ही हुआ
यहाँ
होगा,
भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले हैं कुछ ना कुछ।
कुछ ना कुछ ही है। चले ठीक है, अच्छा हाँ जी, हम इनसे बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जारी हैं, कुर्बानी के ताल्लुक से तذکرہ हो रहा है। कोई इससे हाँ जी अमीन, दावत इस्लामी में आप आए, इतना माशाल्लाह अरसा रहा, तो दावत इस्लामी के ताल्लुक से कोई खुशगवार यादें आपकी हो?
दाऊद इस्लामी में आकर जो खासकर जानवरों के हवाले से जो हमको तरबियत मिली कि इनसे प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, और फिर जैसे माहौल से आए तो फिर वो खाली जमा करने का, और फिर आगे चल के ये इज्तिमाई कुर्बानी करने का, फिर एक अरसा कुछ अरसा के गोश्त की तकसीम का सिलसिला। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो हम जो इस्लाम की बुनियादी बातों में जिन चीजों को सीखते हैं ना, तो देखा ये कि प्रैक्टिकली दावत इस्लामी में काम करने का मौका मिलता है। यानी अगर किसी यानी ऐसे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने अपने पूरे पूरे जानवर दे दिए, यानी वो जैसा आप मिसाल कभी तरगीब दिलाते हैं ना कि मिसाल दे दी कि भाई ये इस तरह से है। तो मुझे याद है कि बाद हमारे ऐसे इस्लाम भाई कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों पर कुर्बानी के जानवर पहुंचाने के लिए मुझे बाकायदा मिला कि भाई आप जो है ना इनके यहाँ पहुंचाएं, ताकि इनके बच्चे जो है ना वो जानवर के साथ खेलें और इनका दिल
कैसा
खुश हो।
तजर्बा रहा ये,
बहुत कमाल का है, कमाल का,
इनके बच्चों के चेहरों
कमाल
पर
का।
मुस्कुराहट
मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारे घर में
कर
बड़ा
दें यार।
हमारे हमारे घर में बड़ा जानवर होता है ना, ठीक है, अब वो घर मोहल्ले में तो होता ही है। इत्तेफाक से अमीर अहले सुन्नत की तरफ से एक बकरा जो है ना हमारे घर पे आया।
आपके
हाँ आप यकीन माने उसकी जो यादें हुई ना, अल्लाह अकबर, यानी वो तो एक ऐसा, यानी उसकी हर बोटी गई है, एक एक
अच्छा
बोटी गई है, अल्लाह, यानी उसको मतलब एक तो तीसरे दिन जिबा किया था कि वो इतनी वो पूरे
मजीद
मेरे,
रहे
हाँ
मजीद रहे।
मजीद रहे भाई। फिर आखिरी टाइम में उसको काट के फिर एहतमाम कि भाई इसका गोश्त यूं मिले यूं मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का भी इस मामले में बड़ा मतलब एक ख्याल किरदार,
किरदार है
बहुत बड़ा किरदार है। और इसमें बाकायदा मैं तो हैरान होता हूँ उस बातों का, जब लिस्ट वो आगे बढ़ती है ना, तो उसमें होता है कि यार इसको भी याद रखा, इसको भी याद
और
रखा।
तो पैसों की भी है कि पैसे भिजवा दो ताकि
अच्छा
वो
यही नहीं, एक और बात भी जो अमीर अहले
ताकि वो
सुन्नत ने
जानवर खरीद सके।
खरीद सके, फिर कुर्बानी करेगा कैसे, वो 2-3 हजार पांच
ये
हजार
भी
जो
एहसास की बात
कमाल
है ना।
कमाल।
ये कॉल है
मोहम्मद अली रावलपिंडी से। अमीन भाई, एक सिलसिले में आप भी हाजिर थे, निगरानी शुरा भी थे और मुफ्ती हसन साहब भी थे, तो उसमें आपने एक हिकायत बयान की थी चोर वाली, तो वो मुस्कुराहट वाला माहौल बन गया था वहाँ पे, तो वो भी एक खुशगवार याद रह जाती है।
ये आपकी खुशगवार यादों में शामिल है कि आप बड़े खुशगवार मूड में आ गए होंगे, हम भी खुशगवार मूड में आ गए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हाजी अम्मी ने एंड करना किधर है।
वो असल में आप जब वो बात बता रहे थे ना खरीदारी का कि यूं यूं करने, तो वो वक्त से किसी ने मुझे मैसेज भेजा था यही कुर्बानी के हवाले से कि दो बैंक के नौजवान थे एम्प्लॉयज, उनको खरीदनी थी जानवर। अब उनका बजट यही था 18-20 हजार रुपए, तो ये आधी छुट्टी लेकर गए कि जरा हम भी बकरा खरीद कर आ जाए। अब मंडी गए तो जिस पे हाथ रखे तो 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, बड़े परेशान। अब भूख भी लगना शुरू हुई तो कुछ लेकर चने वने लेके खाने लगे। अब वो खाते 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 जब एक बकरे पे नजर पड़ी, वो थोड़ा नॉर्मल था लेकिन गुजारा था, तो उससे पूछा भाई कितने का है, तो उसने कहा 18 हजार रुपए का। तो ये दोनों चौंके क्योंकि पहला आदमी था जिसने 18, वरना सब 30 हजार तक बातें करें। तो उसने कहा भाई कुछ कम हो जाएंगे, तो उसने कहा कम नहीं होंगे यार, कुछ कम कर लो। नहीं लेकिन मैं ये बकरा यूं बेचूंगा नहीं। तो भाई कैसे बेचोगे, तो उसने कहा असल में मुझे एक गधा खरीदना है और वो है 16 हजार का। तो मैंने उसको बोला गधे वाले को कि भाई तू बकरा ले ले और तू मुझे गधा दे दे। तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं बेचूंगा, तो अगर आप मुझे गधा खरीद कर दें और मुझसे बकरा खरीद लें और ऊपर के पैसे मुझे दे दें। अब वो यूं बाजार कारोबारी वो अकाउंट से रिलेटेड थे, तो फौरन कैलकुलेशन कर ली कि 16 हजार का गधा खरीद लेंगे, 2 हजार मिला लेंगे तो 18 हजार में बकरा मिल जाएगा। अब वो दोनों वहां गए गधे वाले के पास, तो गधे वाले के पास जाकर उससे पूछा तो उसने भी 16 हजार बताया, भाई कुछ कम कर लो। का नहीं, दाम एक है, बाटा रेट। तो बहरहाल वो उन्होंने 16 हजार रुपये दिए उसको। अब वो दोनों पेंट शर्ट वाले जैसे गधे को खींच कर लाए तो देखा आदमी गायब, बकरे वाला। अब ये दोनों परेशान कि अब क्या करें, पीछे मुड़ के देखा तो गधा वाला गायब। अब ये दोनों पढ़े लिखे जो कहलाने वाले ये मंडी में
गधा
गधा लेके
लेकर
खड़े थे। अब वो वही बात है कि ये जो खरीदारियां जब करने जाते हैं ना, तो ये एक से एक हिसाब किताब बंद है। आज ही किसी ने भेजी है कि कोई दुम्बा खरीद के लाया था, अब वही था कि वो ऊन ऊन लगा हुआ था तो उसने बड़ा मुतासर हुआ। अब घर आकर उसका मुंह छोटा था, तो वो होता है ना कि जैसे बाज नस्ल वाले होते हैं कि मुंह छोटे, तो घर आकर जब उसने कुछ उतारा होगा तो एक आध जगह से उसकी खाल खिसक गई, तो पता चला वो एल्फी से वो बच्चा था दुम्बे का, उसके ऊपर
ओ
पूरी
बहुत
खाल ओढ़ दी
ओ
उसने और उसने हिसाब किताब बना दिया। तो ये तो एक बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि
तो
एक
सदमे
से
की
एक
बात है,
बहुत।
ये सदमे की बात है कि ये बस मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि जब कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जाएं तो तजर्बेकार लोगों के साथ जाइएगा,
माशा
ये
अल्लाह
मेहरबानी है। अगर कोई वाकई ईमानदार, अच्छा दयानतदार बेचने वाला भी अगर आपके उस रबते में है तो मेरा ख्याल है 2 पैसे मत देखिएगा, जानवर अच्छा लीजिएगा, बेऐब जो जिसकी कुर्बानी हो जाती है वो इसमें इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जानवर किस तरह का आपको लेना है और किस तरह का जानवर नहीं लेना। तो ये थोड़ी बहुत मालूमात लेके जाएंगे तो बहुत बड़े वाकये और हादसे और सदमे से आप बच पाएंगे। कॉल दें। बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जी कॉल दें।
खुशगवार यादों में माशाल्लाह निगरानी शूरा की आमद और अमीन भाई की आमद मरहबा। निगरानी शूरा, यादें तो फिर क्या बात है, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, तो मदनी फूल अता फरमाइए कि यादों का जो जिक्र होता है क्या ये भी एक तवंगरी और हशाशियत बशाशियत बख्शता है, यानी ऐसी यादें याद करना कि जो इंसान के ईमान को यानी कुव्वत अता हो और ईमान की मजबूती अता हो। इस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए, बेसा मकसद की दुआ फरमा दीजिए, ईमान की सलामती की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सब की मगफरत फरमाए बेहिसाब।
आमीन। यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम बिग़ैरिल हिसाब। और अल्लाह हमारी दुनिया और आखरत को बेहतर बनाए, याद मुस्तफ़ा की तो बात ही कुछ और है।
क्या बात।
अमीन भाई माइक लें, आप लें।
उनके निसार को
بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک ذکر مبارک چلا. حج امین مدینہ کی کوئی خوشگوار یادیں ہم سے شیئر کریں، کیسے جانا ہوا مدینہ، پہلی مرتبہ کب جانا ہوا مدینہ، راتیں بھی مدینہ، باتیں بھی مدینہ، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جی.
1992 میں
شادی
ہوئی تھی، گھر والوں نے فیملی نے ترکیب بنائی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں، ماحول سے میں وابستہ ہو گیا تھا.
91 میں
90 کے اینڈ 90 میں ہوئے تھا، تو ہمارا جو علاقہ صدر چل مدینہ کا چینل جو نا ہمارے یہاں کافی گرم رہتا تھا کہ پیر صاحب کے ساتھ جائیں،
صدر کا علاقہ آپ کا ہوتا تھا،
ہمارا علاقہ صدر تھا نا
کراچی
میں. تو میں نے اپنے نگران کو خبر دی کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں مدینہ، میرا ویزا لگ گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، تاکہ عمرے آپ باپا کے ساتھ بغیر مدینہ جاؤ گے؟
پیر صاحب کے بغیر.
پیر صاحب کے بغیر اب یقین مانے وہ ایسا، کیونکہ ماحول بنتا تھا ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، میں گیا نہیں. پھر ذہن بنایا تھا کہ مدینے جانا ہے پیر صاحب کے ساتھ،
عمرے پر نہیں گیا،
حالانکہ ویزا ٹکٹ سب کچھ ہو گیا تھا لیکن نہیں گئے تھے. پھر الحمدللہ 95 میں چل مدینہ ہوا.
92 میں موقع تھا،
موقع
جو بلاوا کی
جی بات ہے،
اور پیر صاحب کے ساتھ،
پیر صاحب کے ساتھ
کیسے ہوا یہ؟
وہ تو خیر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب وہ دن آتے تھے حج کے فارم بھرنے کے، تو پھر وہ جہاں جہاں پیر صاحب تشریف لے جاتے تھے تو وہیں نعت خوانی، رونا دھونا سب لگتا تھا. تو الحمدللہ ہم تو ہر سال لائن میں تو لگتے ہی تھے. تو ان دنوں میں مدن انعامات کا چینل چلا تھا اور 30 مدن انعامات ان دنوں میں تھے، تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں ایکٹیو ہوا تھا اور وہ پھر فارم وارم بھی بنے تھے. تو الحمدللہ میرا 29 پر میں پہنچ گیا تھا عمل میں. تو پھر وہ نشست تھی جس میں چل مدینہ ہونا تھا، الحمدللہ امیر صاحب نے قبول فرمایا اور پھر
کیا خوشگوار ماحول تھا
وہ، تو
کیا یاد،
یعنی کہ اس کا اگرچہ ماحول تو دیکھا ہی، حج پہ تو لوگ جاتے ہیں مدینے جاتے ہیں، مگر امیر علیہ سنت کا یہ جو سارا ایک سلسلہ بنتا تھا کہ
پریپریشن
کیا،
چل مدینہ کا جو قافلہ تیار کرنے، مطلب سفر سے پہلے کی ہم لوگ بھی پریپریشن کرتے ہیں نا، لیکن یہ بھی ایک پریپریشن ہے کہ ساتھ چلے کون،
کیا بات،
اور وہ جو قافلہ ہو، جو گروپ ہو، جو اسلامی بھائی شامل ہوں، وہ کون ہو، وہ اس کا مزاج سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، مطابقت بہت ضروری ہے. اب جس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کی سوچ کہیں اور جا رہی ہے، آپ کی سوچ کہیں اور جا رہی ہے. تو یہ مدنی انعامات جو ہے نا، یہ ماشاء جو عمل کے طور پر ایک اسلامی زندگی گزارنے کے ایک بہترین ایک مدنی پھول ہے مدنی انعامات. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے، ہم اس کو پڑھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اور یہ مدنی انعامات خود ایک خوشگوار یادیں لیے ہوئے ہیں کہ اس مدنی انعامات کے اندر یاد مدینہ ہے.
کیا بات،
یہ چل مدینہ کے تعلق سے یہ سوالات، 12 سوالات، اور پھر وہ ابھی بتاتے رہتے ہیں کہ پھر یہ 30 اور یہ آگے بڑھتا، اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک انتہائی بنیادی ترین اور ایک اہم ترین مدنی کام ہے مدنی انعامات. تو وہ ایک علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، ذوق، شوق، اچھا پھر صرف عمل نہیں، تڑپ، وہ امیر صاحب تڑپ،
اس کی تو جو مطلب نشستیں جو ہوتی تھی اور اس میں جو ہر چیز پر، یعنی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، اور خاص کر 2 سال تو ہمیں بھی یہ موقع ملا امیر علیہ سنت کی 2018 और 19 में जो सफर हुआ, तो उसमें भी ये चीजें जो देखी जाती, तो वाकई यानी कि उस वक्त से यानी कि हज के फार्म भरे जा रहे हैं। इमरान भाई जो साइन करने का जो जो था ना, फार्म पे साइन करने की जो नशिस्त हुई थी, मैं तो हैरान कि यानी कि हर चीज में अकीदत मोहब्बत, यानी साइन करने का भी जो एक वो नशिस्त हुई थी ना, हल्क कराने की जो नशिस्त हुई थी, अल्लाह अकबर, फिर वो सामान मदीना, सफर मदीना का जो सामान, फिर उसके बैग,
ये सब यादें हैं ना,
सब याद
यादें,
क्या बात है,
ये खुशगवार यादें नहीं तो क्या है,
क्या बात है
कि मदीने कैसे गए और इसके लिए क्या क्या, मतलब कि वो ये इश्क के, ये समझे, ये राह इश्क पर जो चल चल के जो मदीने गए, तो भी क्या मदीने जाना था। हाजी अमीन की एक हमारे पास यादगार मूवी है, कुछ मिली थी मदीने पाक के ताल्लुक से, और 2, 3, 4, 5 मनाजिर एक ही पैकेज के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखते हैं, हाजी अमीन आपकी खुशगवार यादें। यादें एक चंद सेकेंड के ये मनाजिर हैं, एक बार फिर चलाएं। मस्जिद नबी शरीफ वाला जो है, जरा उसको रोकिएगा, मस्जिद नबी शरीफ वाला जो मंजर था आखिर में जो दिखाया गया था
2018 में जब सफर मदीना हुआ था, अमीर अहले सुन्नत की आप पूरे काफले की जो आमद हुई थी मस्जिद नबी शरीफ में, तो मैं यहाँ बाहर अब्दुल हबीब भाई के साथ, यहाँ हम लोग इंतजार,
ये जो अब्दुल हबीब भाई के साथ जो खड़े
जी खड़ा हूँ ना, यहाँ हम इंतजार कर रहे थे, यहाँ से बापा तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए, फिर
हाजरी हुई,
फिर मस्जिद नबी शरीफ में हाजरी हुई।
क्या यादगार,
क्या बात,
क्या यादगार, माशाल्लाह।
और 1995 में तो बस वो होता था ना कि मस्जिद नबी शरीफ में हाजरी है पीर साहब के साथ, तो एक ऐसी एक वो एक कैफियत होती थी कि यानी कि अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाएंगे, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ ले जाएंगे, हम पीछे जाएंगे काफले वाले, और जब वापसी होगी तो पहले हम मस्जिद नबी शरीफ से बाहर आ जाएंगे,
तो ताकि जाना हो जाए।
हाँ, तो वो
और चल का जो
कॉम्बिनेशन होता था ना, अल्लाह
और चल की, तो अच्छा वो बस में भी होता था
जी, बिल्कुल,
कि पहले दाखिल होना बाद में निकलना, जहाज में भी होता था पहले ये करना, फिर
अल्लाह,
इसकी अपनी यादें हैं और क्या बात है
मदीना में। ये एक ये ना ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को दराज़े उम्र बिलखैर अता फरमाए, यानी कितनी दिल जोइयों का जो एक वो सफर का मौका होता था। हम जब मक्के पहुंचे थे 1995 में, तो हमारे दो इस्लामी भाई बुखार में मुबतला हो गए, और शदीद बुखार था उनको, और बुखार भी वाकई था कि अब पूरा काफिला था, वो बेचारे बिस्तर पे पड़ गए, और उम्रे का वक्त हो गया, हम अमीर सुन्नत के साथ उम्रे पे जा रहे थे सारे। अब वो रो रो कर उनका जो ना बुरा हाल के हम क्या नहीं जाएंगे, ज़ाहिर उनकी कैफियत ही नहीं थी ले जाने की। बहरहाल अमीर अहले सुन्नत हम सब रवाना हो गए, और जब मस्जिद आयशा में पहुंचे तो अमीर सुन्नत नियत अमीर सुन्नत फरमाते थे पहले, तो कहा आज का ये उम्रा मैं उन दोनों मरीजों की तरफ से करता हूं।
ओहो,
अब पूरा का पूरा काफिला जो है जिसमें 42 इस्लामी भाई थे, 8 इस्लामी 50 थे तो टोटल काफिला हमारा, 50 के 50 ने उन दोनों की तरफ से किया। यानी जब वापसी हुई थी ना हमारी, और जब इनको ये बताया था कि आज के जो उम्र है ना ये पीर साहब ने भी आपकी तरफ से किया, यानी वो एक होता ना पूरा एक माहौल बना,
हाल बिगड़ा है तो बीमार,
हाँ हाँ, तो वो सारी ये जो बातें है ना, ये अब ये कैसे भूले आदमी, ये कैसे भूले। और मुझे वो याद है मस्जिद आयशा में एक और उम्रे पे हम जब साथ थे तो अमीर ने फरमाया कि आज का ये उम्रा में दावत इस्लामी के तमाम निगरान दर्श देने वाले बयान करने वाले और सारे जिम्मेदारान की तरफ से करता हूँ। पीछे जितने थे सबने नियत की। मैं हालांकि उस टाइम से 4-5 साल ही हुए थे माहौल में, यानी अब मदनी चैनल के नाजर में आपको भी ये दावत देता हूँ कि इसको जरा गौर करें कि जब एक तंजीम के बड़े सरपरस्त जो हमारे अमीर हैं जो हमारे पीर साहब हैं ये अंदाज जब इख्तियार करते हैं तो ऐसा कौन होगा जो छोड़ के जाएगा। यानी ये जो बॉन्डिंग होती है ना, रिलेशनशिप जो ताल्लुक जो कायम होता है, तो ये तो वो ऐसे अंदाजे के इंसान सोचे तो कहते यार मतलब हम सारी जाने भी दे दें और सब कुछ निछावर हो जाए फिर भी ऐसी मोहब्बत है ऐसी शफकत है ये कहाँ मिले।
2018 में तो आप
मैं पहले सफर पहले हुआ था,
आप पहले से पहुंचे हुए थे कैसे
असल में वो बस ये भी पीर साहब की शफकत है, वरना मैं तो हकीकत है मुझे तो पता भी नहीं था कि इस साल आपका ये सफर होगा।
वो हमारी जिंदगी का खुशगवार
वो ऐसा हुआ नहीं, वो जो वाकया हुआ ना उस दिन अमीर सनत को मैंने तलाक हज का जो
अरे मेरी जिंदगी खुशगवार यादों में वो घड़ी है जब अब्दुल हबीब भाई के हाथ में पासपोर्ट था।
क्या बात
जी।
हुआ ये कि जो चल महफिल मदीना थी 2018 की, उसमें हाजियों के लिए था कि भाई हाजी जा रहे हैं तो उनका हम दावत इस्लामी मजलिस हज उमरा की तरफ से होता है तो वो एक महफिल थी, मैं भी था नीचे। अब वो हार पहनाए जा रहे थे ना हाजियों को, तो एक हाजी ने बापा को हार पहनाया, यानी वो हार जो था ना कि बापा आप भी हज करेंगे यूं करके वो एक चैनल चला ना। अच्छा मैं आखिर में था, सब की मुलाकात हो गई तो फिर मेरा भी किसी को पता था कि ये भी जा रहे हैं। अपने जाते तो चल पे ही है लेकिन वो चूंकि घर में भी एक था सिलसिला जाने का तो मेरी तरकीब बन गई थी। अब वो हो गया, हमने भी हार पहन लिया पीर साहब की तरफ से। अब फिर पता चला कि भाई आप लोगों का भी सफर है। अब ये हमें तारीखें नहीं पता थी मगर वो इत्तेफाक से कि एक दिन का ही फर्क था हमारा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहलुसुन्नत की खुसूसी शफकत है। हालांकि वहां पर हमको भी इतना हम अपडेट नहीं होते थे जदवल से, लेकिन बस यूं समझे कि हम को हर जगह साथ ही रखा,
याद किया था।
बिल्कुल
याद कर सकते पक्के कॉल्स लें। आज अमीन साहब आपके लिए कॉल्स होंगी जी, कॉल्स दें।
मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे अमीन भाई आपकी बारगाह में अर्ज है, आपने इस बार कौन सा जानवर खरीदा है आप मेरे लिए दुआ फरमा लीजिए, मैं आलिम बामल मुफ्ती बनूँ, जजाक अल्लाह खैरा।
असल में हमारी जो टीम है ना जो खरीदारी करती है, क्योंकि मैं कई सालों से मैं तो जाता नहीं हूँ, तो मैंने तो कहा था कि भाई कोई जानवर की तरकीब बनाए तो इज्तिमाई कुर्बानी में इस वक्त वो सारे लगे हुए हैं ना कि वो जो हमारी तैयारियां नशिस्तों की है, तो अभी तक तो हमारे आ नहीं सका है जानवर। और मुझे कल प्रेशर था कि भाई आप जा रहे हैं, मैं उसी तरफ जा रहा था मंडी की तरफ, तो मुझे कहा कि आप लेकर आओ, लेकिन अरे मुझे मदनी मुजाकरे में शिरकत करनी थी फिर दूसरे तनवी मसरूफियत थी तो मैं यूं मंडी गया।
अभी तक जानवर आया नहीं,
आया नहीं लेकिन ये आ जाएगा एक दो दिन में, बड़ा जानवर ही आता है घर में इंशाल्लाह, इस बार भी इरादा है
इंशाल्लाह जी। कॉल दें।
हाँ जी अमीन अत्तारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत से, और दाढ़ी को जो इन्होंने रंगना छोड़ा तो आज चेहरे पे सफेद दाढ़ी बहुत जचती है अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गी चेहरे पे नूर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इमरान अत्तारी साहब को सलामत रखे, बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत जानशीन अहले सुन्नत और दीगर जितने भी मौलाना भी अत्तारी हैं, जितने भी रुकन शूरा हैं, जितने भी अहबाब दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अपने प्यारे हबीब का सुफैल और दावत इस्लामी को अल्लाह खूब रोज अदा फरमाए अपने प्यारे हबीब का सुफैल, आमीन बिजाह नबी करीम।
माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, शादो आबाद रखे, अपने कॉल की हौसला अफजाई की, अल्लाह करीम आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। माशाल्लाह सिर्फ बातें अजमीन भाई यादों की जारी हैं, कुछ ऐसा खुशगवार वाकिया के आप किसी से मिले हों और वो उसने आपको कोई खुशगवार यादें छोड़ गई हों आपके जहन पर।
ملنے پر یادگار وہ تو ایک الگ ہے، نہ ملنے پر بھی یادگار ہے،
خوشگوار.
ہاں
دیکھو وہ خوشگوار
ہے، میں بھولتا ہی نہیں میں، کیونکہ اس سے ایک جو اٹیچمنٹ ہوئی نا وہ ایک بڑی پیاری ہوئی. ہوا یہ کہ میں 85 میں جب کراچی آیا تھا ماحول میں نہیں تھا، تو صدر کی مارکیٹوں میں ہی ہوتے تھے ہم، تو چونکہ شروع سے عادت تھوڑی سی شرارت کا اس طرح کا معاملہ تھا، تو دوستیاں بہت چھوٹے بڑوں سے سب سے ہوتی تھی، تو مارکیٹ میں بھی میرا اچھا ہلکا احباب تھا. تو میں پھر وہ مارکیٹ چھوڑ کر پھر دوسری مارکیٹ میں بھی چلا گیا، پھر میں ماحول میں آیا تو میں نے داڑھی رکھ لی. اور یوں تو ہماری دکان کے سامنے ایک کپڑے کی دکان تھی، تو صاحب ایج والے تھے لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ان کو جب مجھے میرا میں نے ایک دفعہ جا کے ملا داڑھی اور ماحول میں آنے کے بعد، تو بڑا امپریس ہوئے تھے، پھر انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی. تو یوں بڑی عقیدت اور محبت کا چینل. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ بیمار ہو گئے یہ. جب بیمار ہوئے تو کچھ کینسر کا مرض ہو گیا تھا.
اللہ اللہ.
تو جو دو چار افراد ملنے گئے تو کسی نے مجھے اطلاع دی کہ یار وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ ان سے ملو.
اچھا.
جب میں ابھی سوچتا ہی رہا تو ان کا انتقال ہو گیا.
او
تو اس نہ ملنے پر مجھے جو ہے نا تھوڑا سا صدمہ ہے ابھی تک. اچھا وہ ہوا گیا کہ میں تو ملا نہیں ان سے، اور یوں تو ایک دفعہ میں ایک سلسلے میں بیٹھا تھا جب وہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے
غلام رسول بھائی،
غلام رسول پہلا جو سلسلہ تھا، تو یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا تھا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی یہ واقعہ جو میں بھولتا نہیں ہوں کہ یار کاش میں مل لیتا تو یوں. تو یہ واقعہ میں نے بیان کیا. چند دن بعد مجھے رکن شورا شاہد مدنی ملے، ہمارے حاجی شاہد مدنی،
ابو ماجد.
تو انہوں نے کہا یار آپ نے کوئی واقعہ سنایا تھا؟ میں کہا ہاں. تو کہا میرے تایا جان کا فون آیا تھا کہ دیکھ مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں واقعات لوگ پوچھتے ہیں، تو تو بھی آگے مل لے کہیں، ایسا نہ تجھے بھی بتانا پڑے ایسا ہی کوئی واقعہ. مطلب وہ یوں لیا کہ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے، تو یہ ایک واقعے پہ واقعہ ہوا تھا کہ اس طرح سے ایک یاد ہو گئی کہ مطلب نہ ملنے پر بھی نہ جو
بعض کرنا چاہیے
کرنا چاہیے
اپنے جان پہچان والوں کے. بعض اوقات ہم سستی کر جاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسے بیمار ہوتے ہیں یا یادیں ہوتی ہیں، پھر وہ پھر ایک بر ہی جاتا ہے کہ یار کاش کہ میں مل لیتا. صلہ رحمی کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز اتنا پیارا ہو کہ بے نمازی نمازی بن جائے، گناہوں میں مبتلا نیکی کے راستے پر آ جائے. یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شریعت کے طریق دائرے کار میں رہتے ہوئے ضرور آپ ان سے صلہ رحمی کا انداز اختیار کریں، اس سے سلوک کریں، غم خواری کیا کریں. کال دیجئے.
آپ کا سلسلہ خوشگوار یاد مدنی چینل کا بہت خوبصورت اور پیارا، میں نے ابھی یہ سلسلہ دیکھا اور ابھی حاجی امین اتاری صاحب نے یہ فرمایا کہنا کہ مجھے 92 کے اندر عمرے کی سعادت مل رہی تھی، ویزا بھی لگ چکا تھا، پر حسرت تھی کہ مرشد کے ساتھ جائیں. سوال یہ ہے کہ مرشد کے ساتھ جانا پھر صبر کرنا، اس کی کچھ برکتیں کچھ فضائل برائے کرم کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟
سر میں اس میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا.
نہیں مائک لینا پڑے گا.
کسی کے سفر ہے، یہ تو سفر ہی ایسا ہے کہ کسی کا ساتھ مل جائے تو ہی اس کی مزید برکتیں ملتی ہیں. اور الحمدللہ ہم دیکھتے تھے کہ کراچی شہر سے تو خاص کر اسلام بھائی کا سفر ہوتا ہی تھا امیر السنت کے ساتھ، تو خالی وہ جو چھوڑنے کا جو یادیں، امیر السنت کا قافلہ جو ایئرپورٹ جاتا تھا اور جس انداز سے اس کی جو کیفیت ہوتی
وہ ایک اپنا
وہ ایک اپنی یاد ہے اس کی بھی نا. اور اس وقت چونکہ الحمدللہ گاڑیوں کے ساتھ دوڑنا تو پھر
وہ تو بس ایک یادیں رہ گئی،
یادیں رہ گئی.
اس ٹائم اگر ہمارے پاس کیمرے ہوتے اور مدنی چینل ہوتا اور یہ حالات بھی ہو سے ہوتے کہ امیل سنت کا ایئرپورٹ تک کا جانے کا منظر، اور میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یادوں میں اگر ایک یاد ہے کہ امیل سنت کو میں ایئرپورٹ چھوڑنے میں بھی حاضر ہوا تھا ایک دفعہ، تو امیل سنت صوفے پر شاید کسی اس پر تھے ٹرک پر، جس انداز سے اسلام بھائی نے اٹھایا، ہم تو دور کھڑے تھے اور بس قرآن مچا ہوا تھا اور بس یوں ہاتھ ہلا رہے تھے کہ تو سلام میرا رو رو کے ہیں یہ، تو سلام میرا رو رو کے کہ نا میری بھی حاضری کی دعا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہ محبوب کبریا رش بہت ہوتا تھا نا اسلام بھائیوں کا، تو یوں تو نہیں لے جاتا، اٹھا کر جیسے کہ صوفے پر امیر ہوتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ احرام بھی جو نا بالکل چادر آگے پیچھے ہوتی تھی، امیر رو رہے ہوتے تھے، کوہرام مچا ہوتا تھا، تو اینڈ جو ہوتا تھا نا یہ اسی کلام کا یہ جو ہے نا، میرا سلام کہنا
قافلہ تھا، اور ہمیں جب چھوڑنے آئے تھے، اب وہ ظاہر ایئرپورٹ انتظامیہ ساری اور دھرم بھرم معاملہ، اب وہ جتنے احرام والے تھے سب کو اندر لیا نا، اب وہ سارا اندر سب سامان امان یہ سب، اب وہ وہاں جا کر اندر پاسپورٹ چیک کیا، وہ پتا چلا ایک ایسا تھا وہ احرام کی حالت میں آ گیا تھا بغیر پاسپورٹ کے اندر، اب اس کو کہا کہ بھائی پاسپورٹ، تو کہا نہیں مجھے تو مسجد جانا ہے، بھائی تو پاسپورٹ کہاں ہے، آپ کی ٹکٹ کہاں ہے، وہ تو ایسے ہی احرام باندھ کے آ گیا تھا کہ میں بھی جاؤں گا، یعنی وہ
دو چادریں باندھ کے رہتے
چادریں باندھ میں، تو وہ اتنی محبت میں ایسی کیفیتیں تاری ہوتی تھی، اور یہ جو اسلام نے کہا نا کہ وہ جو صبر تو واقعی تھا کہ جب کمپیریزن کرتے تھے کہ ایئرپورٹ پر عام لوگوں کو جب جاتا دیکھتے تھے یار
ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی،
اور یہ
عشق،
اور پھر اس کی جو وہاں سے امیر علیہ السلام کے جو مکتوب آتے تھے،
وہ
مکتوبوں کی بھی جو
ہم لوگ گلزار ابھی کے اجتماع میں ہوتے تھے مدنی چینل کے ناظرین،
اللہ
اور امیر سنت ان دنوں جب حج پر آپ جاتے تھے، ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ امیر سنت ایک آپ کا خط آئے گا، لیٹر آئے گا، اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھا جائے گا، اور جو وہ اس کی ورڈنگ ہوتی ہے مکتوبات اتار، یہ پورا ایک رسالہ کتاب شائع ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ سے، وہ جو پڑھا جاتا تھا نا ہفتہ وار اجتماع میں، آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا
بھی مشتاق بھی
آپ کے سفر میں،
اللہ
اچھا مکتوب پڑھا جاتا، لیٹر پڑھا جاتا تھا، اس میں اشعار ہوتے تھے، پھر حاجی مشتاق بعد اوقات اس میں سے یا کوئی اور کلام اٹھاتے تھے، تو ہمارے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں بھی نا ایک کوہرام مچا ہوتا تھا، نیتیں ہوتی تھیں، دعائیں دیتے تھے، امیل سنت خوشگوار یادیں، یہ ہمارے نام ہے ہمارے پروگرام کا، اور ابھی باتیں اتنی پیاری اہم مدینے کی حج کی قربانی کی ہو رہی ہیں، ایک مقام پر آپ کی حاضری ہوئی تھی وہ بھی ایک خوشگوار یاد ہے، آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں.
ہم مدینہ منورہ میں بیر غرض جو مبارک ہوا ہے اس پر حاضر ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف روایات بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری جو غسل مبارک دیا گیا تھا اس میں اسی پانی کو استعمال کیا گیا تھا، اور مزید یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے گھر میں یہ پانی منگوایا کرتے تھے، نوش فرماتے تھے.
تو یہ
یاد ہے
جی بالکل
بچوں کے 2017 میں ماشاء اللہ
امیر سنت کا جو انداز تھا نا کلام لکھنے کا، یعنی یہ بھی ایک ایک انداز دیکھا امیر علیہ سنت کا، یہ نا کب گناہ
یاد ہے،
کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، یہ کلام امیر سنت نے 95 کے ہمارے سفر میں لکھا تھا، اور بس وہ اس کے تو کافی اشعار ہیں، تقریباً 40 کے آس پاس اس کے اشعار ہیں. حاجی مشتاق جو نا طواف کے دوران وہ یہ کلام پڑھا کرتے
آپ امیر سنت کے ساتھ سفر مدینہ، چل مدینہ میں، اور حاجی مشتاق بھی ساتھ ہیں،
وہ کلام پڑھا جانا. اور پھر ایک دفعہ ایسا ہو کہ حج کے بعد اب مدینے کی حاضری کا وقت قریب تھا، یعنی تھا کہ بس اب ایک آدھ دن میں اب مدینے جانا ہے، تو وہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور اشراق، چاشت اور روزے اور یہ سب سلسلے ہوتے تھے، تو فجر کے بعد سے لے کر اشراق کا الگ مختصر سا وقت ہوتا تھا، تو امیر علیہ السلام نے وہ کلام لکھا تھا، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، اور اس میں تھا نا کہ حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. یہ جو شعر تھا، پھر اس شعر پر وہ جو داڑھی میں خار مدینہ لگتے تھے، تو وہ بھی ایک وقت.
یہ شعر سنا دیں.
حشر میں
واپسی ہوئی
تو امیر کا تحریر مدینے میں کیسا سرور رہا.
یہ بھی کلام اسی وقت لکھا
کے بعد جیسے ہم واپس آئے،
مطلب اسی سفر کا کلام ہے.
اس سفر کے بعد امیر شاید کراچی میں لکھا تھا. اور اس میں کمال کیا ہے کہ اس کا ایک ہی شعر میں پڑھتا ہوں. وہاں راہ چلتے تھے ہم دس بستا درود پہ پڑھتے، کبھی
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فضائے حرم کی یادیں وہ رب کے کر